लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आर्त याचना करते हैं कि विश्व के समस्त राष्ट्र और नागरिक हथियारों के उपयोग को कम कर शांति और अहिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टर सुनीता मिंज के साथ हुई भेंट वार्ता को प्रस्तुत कर रहे हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन का मकसद ईश्वर की सेवा करना हो जाए तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता कि वह काम कैसा है, उसे किस क्षेत्र में रहना है या किन लोगों के बीच काम करना है। वह सिर्फ दूसरों की भलाई करता और हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति देखता है। वह चुनौतियों से घबराता नहीं पर उसे अवसर मान लेता है। इस प्रकार वह दूसरों के जीवन में खुशहाली भर देता है। सिस्टर सुनीता मिंज होली क्रॉस की धर्म बहन है, जो इन दिनों एक सुपीरियर के रूप में झारखंड के चौका नामक स्थान में कार्यरत है। आज वे हमें बतला रही हैं कि वहां की विषम परिस्थिति में जीवन यापन करने वाले लोगों के बीच वे किस तरह उनके विश्वास को जीने में मदद कर रही हैं और वे वहां प्रभु का साक्ष्य किस प्रकार दे पा रही हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है सिस्टर सुनीता मिंज के साथ एक भेंट वार्ता। उनके साथ बात कर रही हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। तो सिस्टर सुनीता, आपका हार्दिक स्वागत है।
धन्यवाद। मैं जमशेदपुर धर्म प्रांत के एक जगह में रहती हूँ जिसको कहा जाता है चौका चांडिल, और वहाँ मैं एक विद्यालय में रहती हूँ जहाँ संथाल बच्चे, आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं और कुछ बच्चे बच्चियाँ हॉस्टल में रहते हैं, जहाँ हम लोग अपने जीवन के द्वारा स्कूल में साथ में उनकी शिक्षा दीक्षा में और अपने व्यवहारिक जीवन द्वारा उनको यीशु के प्रति गवाही देते हैं।
बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ किस तरह का क्षेत्र है?
जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक डैम है जिसके कारण बहुत सारे ईसाइयों को वहाँ से विस्थापित किया गया है। तो सारे क्रिश्चिय एक गांव में एक परिवार, दूसरे गांव में दो परिवार, तीसरे गांव में तीन परिवार ऐसे रहते हैं, जिससे वे अपने विश्वास को प्रकट करने में, जैसे चर्च आने में, भाग लेने में उनको दिक्कतें होती है, लेकिन फिर भी वे अपने विश्वास में मजबूत होते ही जा रहे हैं। हम लोग भी उनकी सेवा करते हैं, गांव में जब जाते हैं तो उनके लिए पवित्र मिसा होता है और परिवारों से मिलते जुलते हैं। कभी कभी महिलाओं को हम लोग एकत्रित करते हैं और जीवन के बारे, ईसा मसीह के बारे तथा पारिवारिक जीवन हम लोग कैसे जिएंगे, संध्या वंदना और बाकी बातों को बतलाते हैं।
जैसे आपने कहा कि विस्थापन हुआ और बहुत सारे हमारे क्रिश्चिय भाई बहने दूर चले गए और सिर्फ एक दो परिवार गांव में रह गए हैं, कुछ कुछ लोग ही गांव में रह गए हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता होगा कि किस तरह से अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख सकें। तो ऐसे समय में आप लोगों का जो उनके साथ उठना बैठना, उनको उनसे मिलना, उनको प्रोत्साहन देना बहुत शक्ति देता होगा। तो
जी,
ये बहुत बड़ा मिशन है।
विशेषकर विस्थापित हो गए हैं तो उनके पास जमीन नहीं है। पहले उनके पास जमीन था जिसे वे खेती बाड़ी करके जीवन जीते थे, लेकिन विस्थापित होने के कारण केवल घर द्वार है और उनकी खेती बाड़ी नहीं है, जिसके कारण वे शिक्षा का भी महत्व अभी तक नहीं समझ पाए हैं। कुछ क्लास तक पढ़ते हैं, उसके बाद में वे फैक्ट्री में काम करने चले जाते हैं। और हमारे जिले में जहाँ हम लोग रहते हैं खरसावां, उसमें बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, आयरन स्पंज फैक्ट्री, और दूसरे दूसरे फैक्ट्रीज हैं जो विभिन्न कंपनियों द्वारा चलाए जाते हैं। तो बच्चे 8-10 क्लास तक पढ़ते हैं और अपने आर्थिक स्थिति संभालने के लिए वे फैक्ट्रियों में काम करना शुरू करते हैं। इस स्थिति में हम लोग उनको विद्यालय में आकर शिक्षा पूरी करने की मैंने उनको सुझाव देते हैं ताकि वे अपने जीवन बेहतर बना सकें, उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, ना कि वे अधूरी शिक्षा पाकर ऐसे ही छोटी नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं।
तो अगर वे लोग मजदूरी नहीं करेंगे, फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे, तो उनके खाने पीने के लिए भी तो दिक्कत होगी।
जी हाँ,
तो ये मजबूरी है।
मजबूरी है, तो उसमें भी हम लोग कुछ मदद करते हैं कि आगे पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं।
इसके लिए कुछ आप लोग विशेष योजना बनाए हैं, कुछ जैसे दूसरे जगहों में बहनों को चाहे बच्चों को आप लोग विशेष रूप से मदद करते, वैसे कुछ वहाँ पर प्रोजेक्ट है?
होली क्रॉस से बहुत चैरिटी है, चैरिटी दिया जाता है जिसे हॉस्टल बच्चे लोग को और बहुत बेहद गरीब बच्चों को। फिर टाटा जमशेदपुर से कुछ मदद मिलता है।
अच्छा।
फिर सरकार इनके लिए जो पहाड़ियां हैं, बिढ़ूर हैं, प्रिमिटिव जाति के लोग हैं, उनके लिए आदिम जनजाति, उनके लिए सरकार मदद देती है। तो उसके लिए हमें आवेदन लिखना पड़ता है स्कूल से। तो उन ये बच्चे भी हमारे यहाँ हैं और उनका तो पहला जेनरेशन होगा चाहे दूसरा जेनरेशन विद्यालय में आने का, इसलिए उनको हम लोग विशेष देख रेख करते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं और सरकार उनके लिए कुछ सारी सुविधाएं देती है।
तो ये हमारे ख्रिस्ते भाई बहनों के लिए केवल आप लोग मदद करते हैं या उस क्षेत्र के सभी लोगों को मदद?
सभी लोगों को।
अच्छा, तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आती है कि?
नहीं जी नहीं, उसमें सभी प्रकार के सहयोग मिलते हैं हमें। और बच्चे तो अभी विद्यालय के प्रति रुचि नहीं रह गई है, वे घर में रहते हैं, उनका घर द्वार पहाड़ के ऊपर जंगल में है, तो वे जब स्कूल आते हैं तो उनकी सुविधा के अनुसार नहीं होता है। जिनमें उसमें रुचि है वे तो घूमना अधिक पसंद करते हैं, लेकिन विद्यालय आने से उनको बैठ के पढ़ना पड़ता है जो वे अभ्यस्त नहीं है। लेकिन फिर भी उनको हम लोग ऐसा माहौल देते हैं, वातावरण बनाते हैं, माँ बाप उनको बुलाते हैं ताकि वे होम मने की सिकनेस ना हो, इसलिए वे आते हैं और इस तरह से वे पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। अभी 10th तक कम से कम 1-2 बच्चे 3 बच्चे हैं बिढ़ोर पहाड़िया।
बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है जिसको आप लोग बहुत धीरज से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत सिस्टर सुनीता मिंज के साथ हुई भेंट वार्ता को सुन रहे थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।
दूर गगन से भोर का तारा जैसे फैलाता उजियाला, तेरे सुतों को मरियम माता दे दे अपनी ममता। दूर गगन से भोर का तारा जैसे फैलाता उजियाला, तेरे सुतों को मरियम दे अपनी ममता।
आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कहीं धूप तो कहीं छांव। लेखक है विजय पंडित। श्रोताओं, आपने श्री प्रदीप जी का यह गाना जरूर सुना होगा, सुख दुख दोनों रहते उसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। भले दिन भी आते जगत में, बुरे दिन भी आते, क्या खुशियां क्या गम, ये सब मिलते बारी बारी। मालिक की मर्जी पे चलती है ये दुनिया सारी, ध्यान से खेना जग में बंदे अपनी नाव, कभी धूप कभी छांव। हाँ श्रोताओ, यही जीवन की सच्चाई है, हर किसी को इस सच्चाई का सामना करना है। प्रकृति के भी दो पहलू हैं, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन। रात के बाद दिन आने में कितना समय लगे यह अलग बात है, पर दिन के बाद रात जरूर आती है। हमारे जीवन में भी सुख और दुख का क्रम चलता है, ऊपर वाले की मर्जी कब सुख और दुख भेजे, और हमारी मर्जी है हम सुख और दुख को किस प्रकार स्वीकार करते हैं। यदि हम हिम्मत से दुख का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो सही मायने में जीते हैं, दुख के बाद सुख का उदय जरूर होगा। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो लीजिए, प्रस्तुत है विजय पंडित की लिखी नाटिका कहीं धूप तो कहीं छांव।
अनीता, मेरी कहानी का नया शीर्षक कैसा लगा तुम्हें? कभी धूप कभी छांव।
वाह प्रोफेसर साहब, क्या शीर्षक है, कभी धूप कभी छांव। वाकई तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। अरे गोलू, तू जाग गया?
पापा, कभी धूप कभी छांव क्या होता है?
अरे पहले ये बता गोलू, तू सोया या नहीं?
नहीं पापा।
क्यों?
मैं आपकी और मम्मी की बातें सुन रहा था। बताओ ना पापा, कभी धूप कभी छांव क्या होता है?
बेटे, कभी धूप कभी छांव इसका मतलब जिंदगी से है। हमारी जिंदगी में सुख और दुख आते रहते हैं, इसलिए इसे हम कभी धूप कभी छांव कहते हैं। अच्छा गोलू, अब तू सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना?
अच्छा पापा। अच्छा मम्मी, गुड नाइट।
गुड नाइट।
गुड नाइट बेटा।
अच्छा अनीता, अब तुम भी सो जाओ, मुझे अभी एक टाइटल और कंप्लीट करना है, और कल इस किताब का विमोचन भी है, बड़े बड़े लोग आएंगे वहां, तुम चलोगी?
क्यों नहीं प्रोफेसर साहब, मेरे पति की किताब का विमोचन है और मैं नहीं आऊंगी, ऐसा कैसे सोचा आपने?
अनीता, तुमको क्या लगता है ये किताब चलेगी?
अरे तुमने दिन रात एक कर दिए है, चलेगी क्यों नहीं, दौड़ेगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी तुम्हारी कहानी।
थैंक यू अनीता, इसका मतलब है ये कहानी सबको पसंद आएगी। चलो अब तुम सो जाओ।
मैं तो कहती हूँ तुम भी सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर अपना टाइटल पूरा कर लेना।
खैर, मुझे नए टाइटल की इतनी जल्दी नहीं है, मैं भी सो ही जाता हूँ। गुड नाइट।
गुड नाइट।
वाह प्रोफेसर साहब, आपकी किताब का धमाकेदार विमोचन हुआ है, वाह क्या लिखा है आपने। लो इनसे मिलिए, मेरी दोस्त है देवकी।
नमस्ते प्रोफेसर साहब, हमें आपकी किताब बहुत पसंद आई है।
सिर्फ किताब पसंद आई या कहानी?
अरे आप तो मजाक कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, दरअसल हम चाहते हैं कि आपकी कहानी पर हम एक नाटक करें।
हाँ प्रोफेसर साहब, देवकी ठीक कह रही है, ये भी आर्टिस्ट है और मेरे साथ में कॉलेज में ड्रामा करती रही है।
वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं भी तो ऐसी ही टीम चाह रहा था। वाह क्या बात है, तो तुम लोग मेरे घर पर ही आ जाया करो ना रिहर्सल के लिए।
क्यों नहीं सर, आप जब भी बुलाएंगे शाम के बाद हम लोग आ जाया करेंगे।
ठीक है।
लेकिन 5 बजे के बाद।
बिल्कुल ठीक है, अब आएगा मजा। सुधीर 5 बजे तक आ जाना।
हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल।
और सुनो, देवकी को लेकर आना।
हाँ, क्यों नहीं सर।
क्या बात है प्रोफेसर साहब, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं।
हाँ अनिता, आज मुझे सुधीर मिल गया था और उसकी एक फ्रेंड देव की भी। वो दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं और अब मुझे अपने कॉलेज के दिन फिर से मिल जाएंगे। काफी ड्रामे किया करते थे।
आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं है। उन ड्रामों के जरिए ही तो अपनी मुलाकात हुई थी और उसके बाद।
और फिर मैंने सौगात में तुमको गोलू भी तो दिया था। अनिता तुम भी करो ना हमारे साथ रिहर्सल, सच में बहुत अच्छा लगेगा।
ना बाबा ना।
क्यों?
अब नहीं होगा मेरे से, पहले की बात अलग थी जी।
क्यों, क्या अब तुम मोटी हो गई?
नहीं।
तो फिर?
वो बात नहीं है।
अरे तो क्या बात है जी।
चलो अब छेड़ो मत मुझे, खाना तैयार है, खा लो।
नमस्ते अनिता जी, मैं सुधीर और ये देवकी। प्रोफेसर साहब घर पर हैं?
आइए अंदर आइए।
क्यों, क्या हुआ अनिता जी?
आइए आप अंदर आ जाइए, आपको मिलवाती हूँ प्रोफेसर साहब से, बैठिए आप।
सुधीर, ये अनिता जी ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं?
हाँ पता नहीं। अरे प्रोफेसर साहब, आपको ये क्या हुआ? ये आपके पैर को क्या हुआ प्रोफेसर साहब?
अरे कुछ नहीं सुधीर, एक एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरी एक टांग कट गई।
ओह नो, प्रोफेसर साहब आपने हमें बताया क्यों नहीं?
सर मैं शहर के बाहर था, इस कारण मैं और देवकी आ न सके। ये तो बहुत ही बुरा हुआ सर, अब क्या होगा?
होगा क्या, अब तो सारा ड्रामा इन बैसाखियों पर ही होगा। खैर मैं अभी हिम्मत नहीं हारा हूं। बोलो रिहर्सल करोगे मेरे साथ?
हाँ।
अनिता जरा सुधीर और देवकी के लिए चाय बना दो।
जी
सर, वाकई आप जैसा कोई नहीं, हम आपके निर्देशन में ये नाटक जरूर करेंगे सर।
हाँ सर, आपने जितना अच्छा लिखा है उतना अच्छा हम नाटक करेंगे, आप हम पे भरोसा कीजिए।
लो लो चाय पियो तुम दोनों।
सुना अनीता, सुना तुमने ये क्या कह रहे हैं?
ये सही कह रहे हैं, तुम सिर्फ गाइड करो इन्हें, मैं भी इनके साथ रिहर्सल करूंगी और तुम्हारे नाटक में हम जान डाल देंगे।
वाह अनिता जी वाह, आपके इस जज्बे को देखकर लगता है कि नाटक सुपरहिट ही हो जाएगा।
प्रोफेसर साहब, आपकी कहानी वाकई बहुत अच्छी है, आप बस हमें गाइड कीजिए, इसकी रॉयल्टी आपको ही मिलेगी।
अरे मुझे रॉयल्टी, रॉयल्टी की कोई फिक्र नहीं है, वो तो मुझे वैसे भी मिल रही है मेरी लिखी हुई कहानियों पर। लेकिन एक बात याद रखना, रिहर्सल जारी रहनी चाहिए।
प्रोफेसर साहब आपका ये मिशन सिर्फ आपका ही नहीं, अब हमारा भी है।
देखो गोलू स्कूल से आ गया है।
नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी।
अरे कितना प्यारा बच्चा है गोलू, आपने अपने पापा की किताब पढ़ी है?
हाँ देवकी आंटी, कभी धूप कभी छाव का मतलब होता है सुख और दुख जीवन में आते ही रहते हैं और इन्हें हमें हिम्मत के साथ जीना चाहिए।
मेरा बेटा।
कहीं धूप तो कहीं छांव, अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे अपर्णा सिंह, पूजा केलकर, संदीप दुबे, विजय पंडित और मास्टर संकल्प। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।